ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर लगने वाले कस्टम शुल्क और पूर्वाधार विकास कर में 50% छूट देने का सरकार का निर्णय। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में डॉ गुणाकर भट्ट नियुक्त। वैशाख 15 से नया शैक्षिक सत्र शुरू करने और नियम विपरीत वसूली की गई प्रवेश शुल्क लौटाने के लिए स्थानीय सरकारों को किया गया पत्राचार। मोहतरी के बथनाहा में दो मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद आग लगने से तीन छात्रों की हुई मौत। और इसराइल की चेतावनी के बाद ईरान के मशहद में सभी ट्रेन सेवाएं रद्द। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर डॉ गुणाकर भट्ट को नियुक्त किया है। आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने डॉ भट्ट को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय किया। इसी बैठक में नेपाल राष्ट्र बैंक के रिक्त दो डिप्टी गवर्नर पदों में से एक पर किरण पंडित को नियुक्त किया गया है। ये जानकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल ने दी। मंत्री रावल ने बताया कि पिछले 15 दिनों में पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, हवाई ईंधन और एलपी गैस की न्यूनतम खपत होने के बावजूद नेपाल सरकार को लगभग 11.72 अरब रुपए का घाटा हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालीन रूप से सरकार ने विद्युत वाहनों की ओर रूपांतरण को लेकर कानूनी व्यवस्था आगे बढ़ाई है। साथ ही जनता से ऊर्जा की बचत करने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने का आह्वान किया है। इसी प्रकार पेट्रोल, डीजल और मिट्टी की तेल के आयात पर लगने वाले कस्टम शुल्क और पूर्वाधार विकास कर में 50% की छूट देने का भी निर्णय किया गया है। ये जानकारी मंत्री प्रतिभा रावल ने दी। मंत्रिपरिषद की बैठक ने अर्थ मंत्रालय के अंतर्गत 73 लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती ऋण को स्वीकार करने का भी निर्णय किया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सिफारिश पर आज मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वरीयता क्रम में बदलाव किया है। चैत 13 को गठित मंत्रिपरिषद में तीसरे स्थान पर रहे गृहमंत्री सुधन गुरुंग अब पांचवें स्थान पर आ गए हैं। दूसरे स्थान पर अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले यथावत बने हुए हैं, जबकि आज के बदलाव में तीसरे स्थान पर विदेश मंत्री शिशिर खनाल और चौथे स्थान पर ऊर्जा मंत्री विराज भक्त को रखा गया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। राष्ट्रीय सभा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष लीला कुमारी भंडारी ने पद तथा गोपनीयता की शपथ ली है। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल के समक्ष उपाध्यक्ष भंडारी ने पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रीय सभा की रिक्त 4 समिति उपसभापतियों का चयन निर्विरोध रूप से हुए हैं। आज संबंधित समितियों की ज्येष्ठ सदस्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में दलों के बीच सहमति के आधार पर एक एक उम्मीदवार का प्रस्ताव आने के बाद वे सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्विरोध निर्वाचित होने वालों में सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधान समिति में पूजा चौधरी, संघीयता सुदृढ़ीकरण तथा राष्ट्रीय सरोकार समिति में जयंती देवी राय, विकास आर्थिक मामले तथा सुशासन शासन समिति में कृष्ण प्रसाद पौडेल और विधान व्यवस्थापन समिति में कृष्ण बहादुर रोकाया शामिल है। ये जानकारी राष्ट्रीय सभा के सचिव तुल बहादुर कड़ेल ने दी। बता दें कि ये पद बीते फागुन 20 गति से रिक्त थे। नए शैक्षिक सत्र के संचालन तथा मापदंड के विपरीत लिए गए प्रवेश शुल्क की वापसी के लिए संघीय सरकार ने स्थानीय सरकारों को पत्र भेजा है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय ने संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के माध्यम से सभी स्थानीय निकायों को पत्र भेजकर निजी तथा संस्थागत विद्यालयों द्वारा लिए जा रहे गैरकानूनी प्रवेश तथा अन्य शुल्क वापस कराने के लिए चैत 22 गति के शिक्षा मंत्रालय के निर्देश को लागू और निगरानी करने का आग्रह किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता शिव कुमार साबकोटा ने बताया कि शैक्षिक सत्र शुरू होने के बाद ही नामांकन करने और मापदंड के विपरीत शुल्क न लेने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि गैरकानूनी रूप से शुल्क लिया गया पाया गया और वापस नहीं किया गया तो शिक्षा आयन 2028 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने कावरे पलान चौक के रोशी खोला क्षेत्र में हुए नुकसान और संभावित जोखिम का स्थलगत निरीक्षण किया है। बारिश के मौसम में रोशी खोला में आने वाली बाढ़ के कारण स्थानीय लोगों को हर साल झेलनी पड़ रही समस्याएं और शिकायतें बढ़ने के बाद गृहमंत्री गुरुंग ने स्वयं जाकर स्थिति का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान गृहमंत्री गुरुंग ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति के बारे में जानकारी ली तथा उच्च जोखिम में पड़े बस्तियों और भौतिक पूर्वाधार की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने वर्षा शुरू होने से पहले संभावित आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक तैयारी और सरकारी निकायों के बीच समन्वय के विषय में रुचि व्यक्त की। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दै छ?
सबै राम्रै चल्दै छ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री निशा मेहता ने कहा है कि संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के माध्यम से सभी के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित नेपाल का निर्माण किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2082 के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हाल के समय में सामने आए स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए सभी क्षेत्रों और सरोकार वाले पक्षों के बीच सहयोग अनिवार्य है। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा है कि आगामी 5 वर्षों के भीतर हर क्षेत्र में क्रमिक सुधार होगा। कंचनपुर के महेंद्र नगर स्थित सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय के निरीक्षण के बाद आज आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पहले वर्ष प्राथमिकता के आधार पर सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करेगी। देशभर शिक्षा क्षेत्र के सुधार के लिए काम करने को सरकार प्रतिबद्ध है। ये बताते हुए मंत्री पोखरेल ने सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर काम करने के लिए विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश किया। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के अध्यक्ष नारायण मानवीजुक्षे रोहित ने कार्यकर्ताओं को सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट होने और जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का निर्देश किया है। पार्टी की तीसरी केंद्रीय समिति बैठक के समापन के अवसर पर उन्होंने केंद्रीय सदस्यों से आम कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उन्हें सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट करने पर जोर दिया। महोत्तरी के जलेश्वर बर्दीवास सड़क खंड के बथनाहा गांव में आज दो मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर के बाद आग लगने से 3 छात्रों की जलकर मौत हो गई है। मृतकों में जिला मुख्यालय जलेश्वर नगर पालिका 6 निवासी 20 वर्षीय सुभाष दास, 20 वर्षीय रविदास तथा एकडारा गांव पालिका 3 निवासी 20 वर्षीय अभिषेक मंडल शामिल है। ये जानकारी जिला पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता डीएसपी शैलेंद्र भट्ट ने दी। इस घटना में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान में मशहद के गवर्नर ने कहा है कि देश की रेलवे पर इसराइल की ओर से अनैतिक हमले की चेतावनी को देखते हुए और एहतियात मशहद रेलवे की सभी ट्रेन सेवाएं अगली सूचना तक रद्द कर दी गई है। बीबीसी फारसी सेवा के मुताबिक ईरानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गवर्नर हसन हुसैनी ने कहा है कि जिन यात्रियों को जरूरी यात्रा करनी है उनके लिए सड़क परिवहन की आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने इस व्यवस्था के बारे में और कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। इससे पहले इसराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान के लोगों को आज ट्रेन का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी थी। ईरान के कुछ हिस्सों में, जिनमें तेहरान के दक्षिण का इलाका भी शामिल है, ट्रेन की पटरियां रिहायशी इलाकों के पास से गुजरती है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए दी गई समय सीमा 24 घंटे से भी कम समय में समाप्त हो रही है। उन्होंने कहा है कि वे पुलों सहित बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर लगने वाले कस्टम शुल्क और पूर्वाधार विकास कर में 50% छूट देने का सरकार का निर्णय। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में डॉ गुणाकर भट्ट नियुक्त। वैशाख 15 से नया शैक्षिक सत्र शुरू करने और नियम विपरीत वसूल की गई प्रवेश शुल्क लौटाने के लिए स्थानीय सरकारों को किया गया पत्राचार। मोहतरी के बथनाहा में दो मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद आग लगने से 3 छात्रों की मौत और इजरायली चेतावनी के बाद ईरान के मशहद में सभी ट्रेन सेवाएं रद्द। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।